ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത, ചാപ്റ്റർ 15, ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 13. അപ്പനെ ചഞ്ചല മൻ കോ കൃഷ്ണ കിശു ചരണോ മേ ഏകാഗ്ര കർക്കെ മംഗളാചരണ കരെങ്കെ താക്കെ ഹം ജോ അധ്യയൻ കർനെ വാലേ ഹേ ഉസ്കാ പൂരാ പൂരാ ലാഭ പ്രാപ്ത ഹോ സകെ ജോ കി ഹേ കൃഷ്ണ പ്രേം കി പ്രാപ്തി. ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതി വാസുദേവായ. ഓം അജ്ഞാനതിമിരന്തസ്യ ജ്ഞാനഞ്ജനശലാഖയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരുവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപഃ കദാമഹയം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേയഹം ശ്രീഗുരുഃ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുന് വൈഷ്ണവാശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഹഗണരഘുനാഥം വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം. ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദം സഹഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാൻവിതാശ്ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാസിന്ധു ദീനബന്ധു ശരത്പതി ഗോപീശ ഗോപീകാന്ത ശ്രീരാധാകാന്ത നമോസ്തുതി. തപ്തകാഞ്ചനം ഗൗരംഗേ ശ്രീരാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വിഷ്യഭാനോ സൂതിദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപ്പതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈതം ഗദാധാരം ശിവാസദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീമദ് ഭഗവത് ഗീത മാത കീ ജയ. ചാപ്റ്റർ 15, ടെക്സ്റ്റ് നമ്പർ 13. ഭഗവാൻ ഹമേ യേ ബതാ രഹേ ഹൈ കി മേ കിസ് കിസ് തരഹ സേ തും പർ ഹർ ക്ഷണ ഉപകാർ കർതാ രഹതാ ഹൂം, കിസ് തരഹ സേ തുമ്ഹാരി കെയർ കർതാ ഹൂം, കിസ് തരഹ സേ തുമ്ഹാരാ ഖയാൽ രഖതാ ഹൂം, കിത്നി ചിന്താ ഹൈ മേരി മുജെ തുമ്ഹാരി. പഹലെ കൽ ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ ശ്ലോക നമ്പർ 12 മേ ഹമേ ബതാ രഹേ ഥേ, യദാദിത്യ ഗതം തേജോ ജഗത് ഭാസയതേഖിലം യച്ചന്ദ്രമസി യച്ചാഗ്നോ തത്തേജോ വിദ്ധി മാമകം. സൂര്യ കാ തേജ് ജോ സാരേ വിശ്വ കോ അന്ധകാർ കോ ദൂർ കർതാ ഹൈ മുജ്സേ നിക്കൽതാ ഹൈ. അഗർ സൂര്യ കാ തേജ് നഹീ ഹോതാ തോ കേസേ തും അപ്നാ കാര്യ കർതേ. ചന്ദ്രമാ കാ തേജ് അഗ്നി കാ തേജ് ഭീ മുജ്സേ നിക്കൽതാ ഹൈ. മുജേ ഭൂൽ ജാതേ ഹോ ലേക്കിൻ മേ ഹർ ക്ഷണ തുമേ യാദ് രഖതാ ഹൂം ഓർ ഹർ ക്ഷണ തുമ്ഹാരി സഹൂലത് തുമേ സഹൂലത്തേ പ്രൊവൈഡ് കർനേ കേ ബാരേ മേ സോച്താ രഹതാ ഹൂം. ഇസി ചീസ് കോ ഇസി ശൃംഖലാ കോ ആഗേ ബഢാതേ ഭഗവാൻ ശ്രീ കൃഷ്ണ കഹതേ ഹൈ, ഗാമാവിശ്യ ച ഭൂതാനി ധാരയാമ്യഹം ഓജസാ പുഷ്യാമി ചൗഷധി സർവാ സോമോ ഭൂത്വാ രസാത്മകഃ. गामा विष्य, इसका मतलब गाम कहते हैं लोक को, आविष्य मतलब प्रवेश करते हैं। जो जितने सारे लोक है ना, जैसे हम कल बात कर रहे थे, एक एक ब्रह्मांड निकलता है, जब कारण दर्शाए विष्णु के रोमकूपों से ब्रह्मांड निकल रहे होते हैं, तो हर ब्रह्मांड में अनेकों लोक होते हैं। और वो लोक जो होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, एक तो खुद भी घूम रहे होते हैं और अपने ऑर्बिट में भी घूम रहे होते हैं, अपनी कक्षा में घूम रहे होते हैं, और घूम रहे होते हैं। परंतु हैरत की बात है, ये अनादिकाल से ऐसा हो रहा है, घूम रहे हैं, लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं होता। किसी ने ये सोचा कि क्यों नहीं हो रहा है, तो भगवान कह रहे हैं गामा विष्य, क्योंकि उसके अंदर मैंने प्रवेश किया हुआ है, मैं सबकी केयर कर रहा हूँ, मैं उनको टकराने नहीं दे रहा हूँ, चबूतानी और जीवों को धारयामी, धारण करता हूँ अहम मोजसा अपनी शक्ति से। भगवान कहते हैं मेरे अंदर इतनी शक्ति है कि मैं इन समस्त लोकों के अंदर प्रवेश करता हूँ और उन्हें अपने अपने ऑर्बिट में घुमाता रहता हूँ, लेकिन कभी भी उनको टकराने नहीं देता हूँ। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुश्रामी जौशरी सर्वा, पुश्रामी कहते हैं पोषण करता हूँ उनको, मतलब स्वतंत्र बनाता हूँ उनको, अच्छा पोषण देता हूँ, किसको, चौषधि, चा मतलब और औषधि मतलब जितनी भी वनस्पतियां हैं, जितने भी है ना जड़ी बूटियां हैं, उन सबको, सर्वा मतलब समस्त, सोम, सोम कहते हैं चंद्रमा को, सोमो भूत्वा रसात्मक, चंद्रमा भूत्वा मतलब बनकर रसात्मक, रस प्रदान करने, यानी कि जो आपको टेस्ट आ रहा है सब्जियों में और वनस्पतियों में, जो औषधि में जो पावर है जो आपको ठीक करती है, ये सारा का सारा मैं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे हर एक प्रॉब्लम को के सॉल्यूशन के लिए कंटिन्यूस कार्य करता रहता हूँ, तुम भूल जाते हो मुझे। कभी कभी लोगों का ये प्रश्न होता है ना कि भगवान की स्मृति नहीं होती, भगवान को स्मरण, बल्कि प्रश्न तो ये होना चाहिए कि कैसे भूलें, सांस ले रहे हैं उसकी मर्जी से, सूर्य निकल रहा है उसकी मर्जी से, चंद्रमा निकल रहा है उनकी मर्जी से, ये सारे लोग अपने प्लैनेट्स जो हैं वो अपने इर्द गिर्द घूम रहे हैं भगवान की शक्ति से, जो औषधियां जो सब्जियां जो खाना अनाज जो सब कुछ हम खा रहे हैं वो सब भगवान की कृपा से। वो कितना मनुष्य कैसे भूल सकता है भगवान को, भगवान भूल रहे कि भूलने की तो कोई बात ही नहीं है, मैं तो हर क्षण तुम्हारा ख्याल रख रहा हूँ। तो इतना कृपालु भगवान है, और मनुष्य कितना गद्दार है कि ऐसे भगवान को भी भुलाकर संसार में अपने लिप्त रहता है, और उनको ऐसा लगता है वो तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली हो रहा है। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं देखो बेटा ऑटोमेटिकली कुछ भी नहीं हो रहा है, सब मैं कर रहा हूँ। और मैं कैसे कर रहा हूँ, इस श्लोक में बताया भगवान ने गामा विश्य च भूतानि धारयाम्यहम् ओजसा, अर्थात भगवान कहते हैं मैं प्रत्येक लोक में प्रवेश करता हूँ और मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में स्थिर रहते हैं, मेरी शक्ति से मैंने इनको उठाए रखा है, हवा में तैर रहे हैं, मेरी शक्ति से तैर रहे हैं, ये कोई खुद ऑटोमेटिक। यहाँ पर अगर साइंसदानों से पूछा जाए कि क्यों ये सारे ग्रह हैं आपस में तैर रहे हैं हवा में, देखते ना हम लोग ग्रहों की फोटोज, वो घूम रहे होते, खुद भी घूम रहा होता है और ऑर्बिट में भी घूम रहा होता है इस तरह से, और दूसरे का भी चक्कर काट रहा होता है, लेकिन कभी एक्सीडेंट नहीं होता। तो वो क्या बोलेंगे साइंसदान कि ये फोर्स है, कौन सी फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स के जरिए ये सारे जो प्लैनेट्स हैं वो आपस में घूम रहे हैं। लेकिन फोर्स का मतलब क्या है, फोर्स का मतलब है शक्ति। यदि शक्ति है, यदि बल है, तो जाहिर सी बात है कोई शक्तिमान भी होगा। जैसे अगर मैं किसी को थप्पड़ मारूं और उसको बोल दिया जाए कि भाई ये किसने मारा है, शक्ति ने मारा है, अरे शक्ति है तो जाहिर सी बात है कोई शक्तिमान भी है ना, किसी न किसी की तो शक्ति ने मारा होगा। तो ये फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स, ओके मान दिया, लेकिन ये किसकी है। तो भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर साफ साफ बता रहे हैं मैं अपनी शक्ति से, मेरी शक्ति से सारे लोग अपनी कक्षा में घूम रहे हैं, भले तुम उसको ग्रेविटी फोर्स का नाम लो, लेकिन वो किसकी है, वो शक्तिमान कृष्ण कहते हैं अहम ओजसा, मेरी शक्ति है। और आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं पुश्रामी चौषधि सर्वा, मैं चंद्रमा सोमो भूत्वा रसात्मकम्, मैं चंद्रमा बनकर समस्त वनस्पतियों में जीवन रस प्रदान करता हूँ। जो जीवन रस वनस्पतियों में, अनाज में, सब्जियों में, जो भी पावर है, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चंद्रमा के रूप में बन जाता हूँ। भगवान अनेक रूप लेते हैं अपने बच्चों के, अपने जो जीव हैं उनकी रक्षा के लिए। भगवान क्या नहीं करते, भगवान कभी ना प्रवेश कर देते हैं लोकों में, कभी चंद्रमा बन जाते हैं, कभी जगत में सूर्य चंद्रमा अग्नि सब बनकर हर समय हमारी केयर करते रहते हैं कि मेरे बच्चों को कोई दुख ना हो, उनको कोई प्रॉब्लम क्रिएट उनके लिए ना। तो यहाँ पर जो वनस्पतियां, जो जड़ी बूटियां हैं उनके अंदर भी भगवान बोलते हैं चंद्रमा बनकर उसमें जीवन रस, जीवन शक्ति प्रदान करता हूँ। श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझाएंगे तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय हो। ऐसा ज्ञात है कि सारे लोग केवल भगवान की शक्ति से वायु में तैर रहे हैं। भगवान प्रत्येक अणु, प्रत्येक लोक तथा प्रत्येक जीव में प्रवेश करते हैं, इसकी विवेचना ब्रह्म संहिता में हुई है। उसमें कहा गया है परमेश्वर का एक अंश परमात्मा लोकों में, ब्रह्मांड में, जीवों में तथा अणु तक में प्रवेश करता है। अतएव उनके प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखाई देती है। इसे बताया ब्रह्मा जी में, ब्रह्मादि कीट पतंगा वदयस्य जीवा यत्तत् मात्र विभव प्रकट प्रभावा। अर्थात ब्रह्मा से लेकर कीट पतंग तक, यानी कि जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हैं उन तक समस्त प्रकट जीवों जीव जिनके द्वारा प्रदत्त शक्ति से पालित है। हर जीव जो है वो भगवान की शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की शक्ति से उनका पालन हो रहा है। और आगे ब्रह्मा जी कहते हैं गोविंदमादि पुरुषम तम, ऐसे गोविंद को मैं प्रणाम कर रहा हूँ। तो इसी चीज को श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं, अतएव उन्हें भगवान के प्रवेश करने से प्रत्येक वस्तु ठीक से दिखती है। जब आत्मा होता है तो जीवित मनुष्य पानी में तैर सकता है, लेकिन जब जीवित सफुलिंग इस देह से निकल जाता है और शरीर मृत हो जाता है तो शरीर डूब जाता है। निस्संदेह सड़ने के बाद यह शरीर तिनके तथा अन्य वस्तुओं के समान तैरता रहता है, लेकिन मरने के तुरंत बाद शरीर पानी में डूब जाता है। इसी प्रकार ये सारे लोग शून्य में तैर रहे हैं। शून्य में अर्थात आकाश में, जहाँ पर शून्य है, कुछ भी नहीं है, वहां पर तैर रहे हैं। और यह सब उनमें भगवान की परम शक्ति का प्रवेश के कारण है। भगवान ने साफ साफ बताया आगामिष्य च भूतानि धारयाम महामोजसा। ये सब जो तैर रहे हैं वायुमंडल में, जितने सारे लोग तो तैर रहे हैं, वो सब भगवान की शक्ति से। जिस तरह भगवान की शक्ति से मनुष्य तैरता है, तो ये लोक के अंदर जब भगवान प्रवेश करता है तो वो भी तैर रहे, लेकिन मरने लेकिन क्या होता है, उनकी शक्ति प्रत्येक लोक को उसी तरह थामे रहती है जिस प्रकार धूल को मुट्ठी, यानी कि अगर मुट्ठी में बंद रहती है कोई धूल को, अगर हम मुट्ठी में ले लेते हैं तो गिरने का भय नहीं रहता, लेकिन जो ही धूल को वायु में फेंक दिया जाता है वह नीचे गिर जाती है। पकड़, जो पकड़ के रखता है ना, भगवान कहता है वो मेरी शक्ति है जिन्होंने इन सारे ग्रहों को पकड़े रखा हुआ है। इसी प्रकार सारे लोग जो वायु में तैर रहे हैं वास्तव में भगवान के विराट रूप की मुट्ठी में बंधे हुए हैं। भगवान की मुट्ठी बहुत बड़ी है, विराट स्वरूप यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये सारा जो जितने लोग हैं वो उनकी मुट्ठी के अंदर है, इसलिए गिर नहीं रहे हैं। ये भगवान की शक्ति है, वरना तो ऊपर, अब देखो हम यहाँ से कोई बॉल फेंकते हैं ऊपर, यहाँ पर फेंकेंगे तो क्या होगा, गिर जाएगा ना नीचे, थोड़ी देर ऊपर रहेगा, एक सेकंड के बाद वापस गिर जाएगा। लेकिन वो इस तरह के इतने बड़े बड़े मतलब हेवी लोक हैं और वो फिर भी तैर रहे हैं, तो भगवान कहता है मेरी शक्ति है, मैंने उनको पकड़ा हुआ है। अगर कोई बच्चा पकड़े रखता है बॉल को तो नहीं गिरेगा, लेकिन हमारे तो छोटे छोटे हाथ है, भगवान का विराट स्वरूप है, उसके बहुत बड़े हाथ है और उन्होंने उसमें पकड़ा हुआ है। उनके बल तथा शक्ति से सारी चर तथा अचर वस्तुएं अपने अपने स्थानों में टिकी हुई हैं। ये सारा का सारा भगवान का बल है। वैदिक मंत्रों में कहा गया है कि भगवान के कारण सूर्य चमकता है और सारे लोग लगातार घूमते रहते हैं। ये सब बताया वैदिक मंत्रों में, मत भयाति वाति वातो यम सूर्य तपंती मत भयात। मेरी भय से जो हवाएं घूम रही हैं जो हवा चल रही होती है मेरे भय से चल रही है। सूर्य तपन्ति मद भयात्, सूर्य जो तपता है वो मेरे भय से। दयात अग्नि वर्षत इंद्र, अग्नि तपती है मेरे भय से, इंद्र जो वर्षा करता है वो मेरे भय से। मृत्यु चरंती मद भयात, और लोगों की जो मृत्यु हो रही, जितने भी देवी देवता जितने भी प्रकृति चल रही है वो सारी की सारी मेरे भय से चल रही है। भगवान 10.10 में कहते हैं, मया दीक्षीर्ण प्रकृति ही सूयते सचराचर हेतु नाने व कौनते जगत परिवर्तते। भगवान कहते हैं कुंती पुत्र मया अध्यक्षीर्ण, अक्ष कहते हैं आंख, और अक्षर मतलब आंख के इशारे से। भगवान कहते हैं जो प्रकृति है वो मेरे आंख के इशारे से कार्य करती है, और ये सत्य है। प्रकृति भगवान के अंडर में काम कर रही है, वो भगवान की दासी है। भगवान ने केवल गीता में कहा नहीं है, भगवान ने ये साबित करके दिखाया, और भगवान आज भी हमें ये कह रहे हैं कि ये जो सारे लोग हैं वो मेरे इशारे से घूम रहे हैं। और जो चंद्रमा में, चंद्रमा जो वनस्पतियों में पावर डालता है, वो सब मेरे इशारे से। तो भगवान साफ साफ हमें बता रहे हैं कि तुम जो कुछ जिस चीज का फायदा उठा रहे हो, जो जो चीज तुम्हारे जीने के लिए कार्य चाहिए होती है, जो जब जब तुम्हारी रक्षा होती है, उसका एकमात्र कारण मैं हूँ। कृष्ण ही केवल हमें बचाते हैं, बचाते आ रहे हैं। इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी चाहिए। ये सब बताने का भगवान का यही प्रयोजन है कि मेरे अलावा कोई तुम्हारा शुभ चिंतक है ही नहीं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, यदि ऐसा उनके कारण ना होता तो सारे लोक वायु में धूल के समान बिखर कर नष्ट हो गए होते। इसी प्रकार से भगवान के ही कारण चंद्रमा समस्त वनस्पतियों का पोषण करता है। चंद्रमा के प्रभाव से सब्जियां सुस्वादु बनती हैं। चंद्रमा के प्रकाश से के बिना सब्जियां ना तो बढ़ सकती हैं और ना ही स्वादिष्ट हो सकती हैं। वास्तव में मानव समाज भगवान की कृपा से काम करता है, सुख से रहता है और भोजन का आनंद लेता है, अन्यथा मनुष्य जीवित ना रहता। यदि भगवान की कृपा ना होती तो अनाज में पावर ना होता, वनस्पतियों में पावर ना होता, सूर्य की गर्मी ना होती, अग्नि ना होती, तेज ना होता, वायु ना होती। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर साफ साक्षर प्रभा जी बोलते हैं, तो फिर मनुष्य जी ही नहीं सकता। रसात्मक शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो लास्ट वर्ड है ना, सोमो भूत्वा रसात्मक, यह शब्द के बारे में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं, प्रत्येक वस्तु चंद्रमा के प्रभाव से परमेश्वर के द्वारा स्वादिष्ट होती है। हम बोलते हैं ना कितनी टेस्टी है, उस टाइम पर याद रखना चाहिए कि ये टेस्ट उसे कृष्ण ने दिया है, चंद्रमा के जरिए से उसे कृष्ण का ही टेस्ट है, जिसको हम भोग कर इतना आनंदित हो रहे हैं। इसी चीज को भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा को दर्शाते हुए श्लोक नंबर 14 में कहते हैं, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समयुक्तः पचाम्यन्नम चतुर्विधम। कितनी कृपा है भगवान की, इतना खिलाया, मतलब वनस्पतियों में और सारे अन्न भोज्य पदार्थों में पावर और टेस्ट डालने के बाद भगवान बोलते हैं, तुम ठूस तो लेते हो लेकिन ये याद नहीं करते, अहम वैश्वानरो भूत्वा। वैश्वानर हम मतलब में वैश्वानर एक पाचन अग्नि होती है, जो मेरे हमारे आमाशय यानी हमारे पेट के अंदर जहाँ पर भोजन पचता है, डाइजेस्ट सिस्टम जहाँ चल रहा है, उसको बोल रहे हैं वैश्वानरो भूत्वा, पाचक अग्नि के रूप में मेरा पूर्ण अंश बनकर प्राणी नाम समस्त जीवों के देह यानी शरीर में आश्रित स्थित रहता है। और प्राणानाम देहमाश्रित प्राणा पान समायुक्त, प्राणा मतलब उच्च श्वास निश्वास, अपान मतलब श्वास यानी कि सांस लेना और सांस देना की जो प्रक्रिया है, प्राणा पान समायुक्त पचामन्यम चतुर्विधम। इसका मतलब संतुलित रखते हैं इन ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज और लेने के लिए जो होता है ना, सांस लेने की परिक्रिया को, उसको संतुलन रखते हैं और पचाते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं। अन्न जो अनाज हम खाते हैं, चतुर्विधम, चार प्रकार का अनाज होता है जिसको हम खाते हैं। और भगवान कहते हैं तुम तो खा लेते हो, ये नहीं सोचते कि कितना खाना चाहिए कितना नहीं, खाते रहते सारा दिन और अंदर बैठ के उसको डाइजेस्ट मैं कर रहा हूँ। देखो मैं तुम्हारे कितनी, हम बोलते भगवान की सेवा करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि ये तो सारा हमारी सेवा कर रहा होता है। हम कितनी हैरत होती है जब कुछ लोग बोलते हैं, कभी कभी है ना सेवा करते भगवान की और बोलते हैं हमें भगवान की बहुत सारी सेवा करनी होती है, ड्रेसिंग करनी होती है, आरती करनी होती है। हम क्या सेवा करते हैं ये भगवान को, तो देखो सारा जब से पैदा हुए, देखो एक मनुष्य जब पैदा होता है, छोटा सा बच्चा होता है, उसकी टीथ भी नहीं होते, पैदा होने से पहले ही वो माता के स्तन में दूध डाल देता है, क्योंकि पहले नहीं, लेकिन उसे पता है कि ये छोटा बच्चा पैदा होगा तो खाएगा तो कुछ नहीं, अब उसे कुछ ना कुछ तो जीवन पोषण करने के लिए चाहिए, तो माता के स्तन में दूध उसके लिए खुद ब खुद भगवान, पहले से ही भगवान की कृपा है, कोई डॉक्टर नहीं करता है, आपकी कोई हिम्मत नहीं है कि आप ऐसा कर सको। और उसके बाद जब थोड़ा बड़ा होता है तो भगवान को लगता है कि अब खाली दूध से इसका गुजारा होने वाला नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ इसके थोड़े थोड़े दांत दे देता हूँ, छोटे छोटे दांत आते हैं, फिर हम छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी चीजें, जैसे अभी जिन जिन चीजों में चंद्रमा बनकर जीवन शक्ति होती है, बनाना को जैसे मेश करके खाते हैं, फिर भगवान ये छोटे छोटे दांत जो है ना उनको, दूध के दांत को तोड़ देते हैं और फिर बोलते हैं अब तो इनको पक्का अनाज खाना पड़ेगा ताकि इसमें और भी ज्यादा न्यूट्रलाइज हो और भी बहुत ज्यादा शक्ति आए। फिर उसको अनाज, दूसरे दांत आते हैं उसके, और फिर भगवान क्या कहते हैं कि उसके जरिए से तुम जब अन्न खाते हो तो उस अन्न को भी मैं पचा रहा होता हूँ, अंदर बैठ के मैं तुम्हें हर तरह से सुरक्षा प्रदान कर रहा होता हूँ, मैं तुम्हें भगवान जीवन के अंत तक और हमारी जरूरतों को पूरा करते रहते हैं, हमारा ख्याल रखते रहते हैं। और हम सोचते कि क्या भगवान ने हमारे लिए किया, क्या बस पैदा करके छोड़ दिया, क्या किया, एक एक चीज एक एक क्षण हम भगवान की कृपा के मोहताज होते हैं। भगवान यहाँ पर बता रहे हैं अहम वैश्वानरो भूत्वा, मैं समस्त जीवों के शरीरों में, प्राणी नाम देह माश्रित, जीवों के शरीरों में पाचन अग्नि यानी वैश्वानर अग्नि के रूप में हूँ, प्राणापान समायुक्त पजामन्यम चतुर्विधम, और मैं श्वास प्रश्वास यानी प्राणवायु जो सांस लेने की क्रिया में रहकर चार प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ यानी डाइजेस्ट करता हूँ, हजम करता हूँ। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आमाशय, आमाशय पेट के अंदर उस जगह को बोलते हैं जहाँ पर प्रसाद जब हम लोग खाते हैं ना वहाँ पर रुकता है, उसको बोलते हैं आमाशय, तो उस पेट में अग्नि होती है, जो आयुर्वेद होते हैं ना वो सब बताते हैं, वहाँ पर एक टाइप की अग्नि होती है जो वहाँ पर पहुँचे हुए भोजन को पचाती है, जैसे उसको डाइजेस्ट करने के लिए एक अग्नि की जरूरत होती है। जब यह अग्नि प्रज्वलित नहीं रहती है तो भूख नहीं लगती है, फिर क्या होता है डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है हमारा, वो अग्नि उसको बोलते हैं मंदाग्नि, जब वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित, कभी कभी बीमार हो जाते हैं ना फिर डाइजेस्ट सिस्टम खराब हो जाता है तो फिर भूख भी नहीं लगती है, और जब यह अग्नि ठीक रहती है तो भूख लगती है क्योंकि डाइजेस्ट हो जाता है। कभी कभी जब अग्नि मंद हो जाती है तो उपचार की आवश्यकता होती है, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है कि भाई क्यों मुझे खाना हजम नहीं हो रहा है। जो भी हो श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं यह अग्नि भगवान का प्रतिनिधि स्वरूप है, क्योंकि भगवान ने साफ साफ कहा अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रित, मैं अग्नि के रूप में तुम्हारे शरीर में बैठा हुआ हूँ और उसको तुम जो खा रहे हो उसको पचाता हूँ। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं वैदिक मंत्रों से भी, बृहदारण्यक उपनिषद 5.9.1 में पुष्टि होती है कि परमेश्वर या ब्रह्म अग्नि स्वरूप में आमाशय के भीतर स्थित है, यानी कि ये शिव भगवान ने नहीं कहा है, उपनिषदों में भी ऐसा लिखा हुआ है, और समस्त प्रकार के अन्न को भगवान ही वहां पर आमाशय के भीतर में बैठकर पचाते हैं। क्या लिखा है अयम आग्नि वैश्वानरो यो यमंतः पुरुषे येने दमन्नम पचन्ते, यानी कि चूंकि भगवान सभी प्रकार के अन्नों को पचाने में सहायक होते हैं, अतएव जीव भोजन करने के मामले स्वतंत्र नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि वो अपनी मर्जी से खा, जब अगर भगवान नहीं पचाएंगे तो फिर हम वो आगे खा भी नहीं सकते हैं। इसलिए हमें हमेशा सोचना चाहिए कि हम वही पदार्थ का सेवन करें जो पहले भगवान को अर्पण किया हुआ प्रसाद खाएंगे, तो भगवान उसको खुशी से पचाएंगे और हमारे शरीर में जीवन शक्ति का संचार होगा। जब तक परमेश्वर पाचन में उसकी सहायता नहीं करते हैं तब तक खाने की कोई संभावना नहीं। अगर भगवान ना अंदर बैठकर डाइजेस्ट नहीं करते तो आप कभी खा ही नहीं सकते। इस प्रकार भगवान ही अन्न को उत्पन्न करते हैं और वे ही पचाते हैं। कितनी कृपा है भगवान श्री कृष्ण की हमारे ऊपर। भगवान ने पहले कहा कि मैं सूर्य पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका, सारी चीजों को उत्पन्न करता हूँ और उनके अंदर जीवन शक्ति रस प्रदान करता हूँ, और जब तुम खाते हो तो क्या करता हूँ, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रिता, और अग्नि बनकर वैश्वानर अग्नि बनकर अंदर बैठकर उसको हजम भी मैं करता हूँ। इतनी कृपा करते हैं भगवान हमारे ऊपर। केवल भगवान की कृपा से ही हम जीवित हैं, केवल भगवान की कृपा से, श्री प्रभुपाद जी कह रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से हम जीवन का आनंद उठाते हैं। वेदांत सूत्र में 1.2.27 भी इसकी पुष्टि हुई है। शब्दादिभ्योऽन्तः प्रतिष्ठानाच, शब्दादि भ्योऽन्त मतलब शब्द के भीतर और आदि हमारे शरीर के भीतर जो वायु है उसके भीतर जो भी हमारे पास है, चाहे हम शब्द बोल रहे हैं, हमारा शरीर के अंदर से जो ऑक्सीजन हम लोग ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड हम जो खारिज कर रहे हैं, वो सब भगवान श्री कृष्ण की यहाँ पर बताया। शब्दादि भ्योऽन्त आदि मतलब इसके अतिरिक्त जो भी प्रक्रिया हो रही है हमारे अंदर प्रतिष्ठानाच, और यहाँ तक के पाचन शक्ति जो हम कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, उसके रूप में आमाशय में उपस्थित है भगवान श्री कृष्ण। अंदर बैठकर हमें हमारे डाइजेस्ट सिस्टम को सेट करते हैं, और अन्य चार प्रकार के होते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, पचामन्नम चतुर्विधम, उनके विषय में श्री प्रभुपाद जी बोलते हैं चार प्रकार के अन्न होते हैं। कुछ निगले जाते हैं और कुछ जैसे लिक्विड के सूरत में होते हैं, कुछ चबा के खाते हैं जैसे भोज्य पदार्थ जैसे खाने वगैरह, कुछ चाटे जाते हैं जैसे चटनियां वगैरह होती हैं, और कुछ चूसे जाते हैं जैसे मैंगोज वगैरह, चूस के हम कोई भी चीज आइसक्रीम वगैरह खाते हैं, चूसते हैं। भगवान सभी प्रकार के अन्नों की पाचक शक्ति है। भगवान हमारे ऊपर बहुत बहुत कृपा करते हैं। कृष्ण की कृपा प्रतिक्षण हमारे ऊपर है, उसी तरह प्रतिक्षण कृष्ण का सिमरन जो है हमारे हृदय में होना चाहिए, यही जीवन का लाभ है। जन्म लाभो परोपुंसाम अंते नारायण स्मृति, ये है कि हमें हमारे जीवन का अगर कोई लाभ है तो ये है कि हम हर क्षण भगवान को याद करते रहें, और भगवान हमें बता रहे हैं कि किस किस सूरत में मुझे याद किया जा सकता है। और कल का जो श्लोक है 15.15, ये सार है पूरे इस अध्याय का, बहुत ही सुंदर श्लोक है। कृपया साथ रहिएगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।